जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा
Ram Ram
हनुमान जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय श्री श्री गौर निताय की जय। ओम ज्ञानतिमिरांध्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वांछाकल्पतरोभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृंदावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरान्ना परः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो मोहता जी के घर में फिर से आने का मौका मिला, ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। लगभग मेरे ख्याल से एक साल तो हुआ होगा, एक सत्संग किया था, हम वहां बैठे थे, आज यहाँ बैठे हैं। राम कथा की वजह से ये पंडाल आपने बनवाया होगा। तो मोहता जी की इच्छा थी कि आज हम भगवद गीता के 16वें अध्याय से दैवी संपद के विषय में हम चर्चा करें, तो वही सही, क्योंकि समाज में इन चीजों का ज्ञान नहीं है, और ज्ञान है भी तो इन गुणों को प्राप्त करने के लिए वो झुकाव या वो इच्छा नहीं है। भगवद गीता का संदेश दिव्य है, हर युग के लिए, हर परिस्थिति के लिए ये उचित है। इस 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण दो प्रकार के गुणों का वर्णन करते हैं, दो प्रकार के संपद, एक है दैवी संपद और दूसरा है आसुरी संपद। 16वें अध्याय में ही श्री कृष्ण कहते हैं द्वभूत सर्गो लोकेस्मिन् दैवीम आसुर एवच। इस संसार में है अर्जुन, दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक है दैवी संपत्ति से युक्त और दूसरे है आसुरी संपत्ति से युक्त। अर्थात जो दैवी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनमें कई लक्षण होते हैं, कोई गुण होते हैं, उसी तरह से जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके अंदर भी कोई लक्षण होते हैं। किसी भी व्यक्ति को लक्षणों से पहचाना जाता है। जब हम कहते हैं कि कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके कोई लक्षण होते हैं जिससे कि हम जान सकते हैं कि ये व्यक्ति बीमार है। कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो हम जान सकते हैं लक्षणों के द्वारा। कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई शक्तिशाली है, कोई कमजोर है, जो भी हो, हर एक चीज की कोई लक्षण होते हैं। तो उसी तरह से दैवी प्रकृति का आश्रय लेने वाले जो लोग हैं, दैवी संपद युक्त जो लोग हैं, उनके भी कोई लक्षण होंगे निश्चित ही। उसी तरह से आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग जो हैं उनके भी लक्षण कई होते हैं। वैसे तो यह अध्याय काफी लंबा है, कई चीजों की चर्चा श्री कृष्ण करते हैं, तो प्रयास करूंगा कि केवल पहले 3 श्लोकों की चर्चा संक्षेप में मैं करूं, क्योंकि इन 3 श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दैवी संपद से युक्त जो लोग हैं उनके क्या लक्षण होते हैं, और ये सुनने लायक है, जानने लायक है, हमारे लिए चिंतन मनन करने लायक एक विषय है। दुर्भाग्य की बात यह है कि आजकल दुनिया में लोग गुणों को प्राप्त करना नहीं चाहते, अच्छे गुण नहीं चाहते हैं, लोग गुणवान नहीं बनना चाहते हैं, लोग केवल धनवान बनना चाहते हैं। क्योंकि भागवत में कहा गया है 12वें स्कंद में कि धन ही सारे अच्छे गुण प्रदान करता है व्यक्ति को कलयुग में, वास्तव में नहीं संसार की दृष्टि। तो इसलिए आजकल सारा समाज, सारी दुनिया धन प्राधान्य हो गई है, धन प्रधान, गुण प्रधान कोई नहीं है। यदि हम बात करते हैं कि देखो ऐसे अच्छे गुणों का अनुशीलन करना चाहिए, तो लोगों को अधिकतर रुचि नहीं होती है। तो गुणवान बनने का प्रयास ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे ज्ञान को सारे समाज में फैलाना बड़ा आवश्यक है आजकल के जमाने में खास करके। तो पहले ही 3 श्लोकों में इस भगवद गीता के 16वें अध्याय में श्री कृष्ण ऐसे 26 दैवी गुणों का वर्णन करते हैं, और हर एक गुण के बारे में काफी लंबे समय तक चर्चा किया जा सकता है, क्योंकि हर एक बहुत महत्वपूर्ण है। और आजकल इन गुणों को देखना समाज में भी बहुत दुर्लभ हो गया है। वैसे ये दोनों जो संपदा हैं, ये दोनों वृत्तियां जो हैं दैवी और आसुरी, अनादि काल से रहे हैं, परंतु इनकी जो मात्रा है वो बदलती रहती है काल के हिसाब से। ऐसे बताया जाता है कि सत्य युग में जो दैवी प्रकृति के लोग होते थे, दैवी प्रवृत्ति के लोग, वो किसी एक लोक में रहते थे, और आसुर प्रवृत्ति के लोग दूसरे लोक में रहते थे, ग्रह में, अर्थात ब्रह्मांड में फैले हुए थे, परंतु विभिन्न लोकों में इनका विभाजन हो गया था। किसी एक लोक में जैसे पृथ्वी लोक में इकट्ठे नहीं रहते थे। जैसा कि आप जानते हैं सत्ययुग में अधिकतर लोग सात्विक थे, सात्विक चित्त के थे। हाँ, हिरण्यकश्यप जैसे असुर कभी कभी हो जाते थे, परंतु बहुत कम थी उनकी संख्या और उनका प्रभाव बहुत कम हुआ करता था। हाँ, हिरण्यकश्यप तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन हिरण्यकश्यप के आगमन या उसके जन्म के पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ी लीला है ये। साधारणतः जो लोग हुआ करते थे वो सात्विक हुआ करते थे। सत्ययुग में चातुर्वर्ण ये अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ करता था, केवल हंस हुआ करते थे। सारे लोग हंस, हंस को आप जानते हैं बड़ा सुंदर पक्षी है, और हंस की विशेषता क्या होती है कि हंस सदैव रमणीय स्थानों में, बहुत सुंदर सुगंधित स्थानों में रहना पसंद करता है, और गंदी जगहों से बिल्कुल दूर रहता है। जैसे कोई सरोवर है जिसमें कमल पुष्प हैं और बहुत अच्छा पवन बह रहा है, बहुत सारे पेड़ वृक्ष आदि वहां पर हैं, ऐसे स्थान में हंस आदि रमण करते हैं। दूसरी ओर हैं कौवे। आप कौवे को किसी अच्छे बगीचे में भी ले जाएं तो कौवे की नजर यहां वहां जाएगी कि गंदगी कहाँ है। सुंदर स्थान में रहते हुए भी कौवे को गंदगी की खोज रहती है। तो हंस ये बहुत महत्वपूर्ण पक्षी है आध्यात्मिक दृष्टि से। अच्छे लोगों की, दैवी संपद से युक्त लोगों की तुलना अधिकतर हंस से की जाती है, और जो बहुत ही आगे बढ़ चुके होते हैं आध्यात्मिक जीवन में उनको परम हंस कहते हैं, श्रेष्ठ हंस, क्योंकि वो ऐसे रमणीय स्थान में, आध्यात्मिक दृष्टि से जो रमणीय है, ऐसे स्थान में निवास करना पसंद करते हैं। जैसे कि जहां भगवान का भजन कीर्तन हो रहा हो, भगवान के भक्त इकट्ठे होकर उनके गुणगान कर रहे हो, ऐसे स्थानों में रहना पसंद करते हैं। भगवान का धाम हो, भगवान का तीर्थ स्थान हो, परंतु दूसरे जो लोग होते हैं जिनकी तुलना श्रीमद् भागवत में कौओं से किया गया है, तद्वायसम तीर्थम उशंति मानस। वायसम तीर्थ, वायस अर्थात संस्कृत में कौआ। तो जो कौए की प्रवृत्ति के लोग रहते हैं वो शराब के अड्डों में, सिनेमा घरों में और ऐसे स्थानों में रहना पसंद करते हैं। हंस की विशेषता और एक ये होती है कि हंस दूध और पानी के मिश्रण में से केवल दूध को निकाल देता है, पानी को छोड़ देता है, वैसे के वैसे। अब ये बहुत विशेष गुण है हंस के। तो जो दैवी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो भी इस संसार में जब रहते हैं, संसार को देखते हैं, परंतु संसार की हर एक चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, केवल उन चीजों को स्वीकार करते हैं जो कि आध्यात्मिक जीवन के लिए लाभदायक हो, जिससे आध्यात्मिक पोषण मिल सके, जिसके द्वारा हम भगवान की सेवा कर सके। कल ही एक सज्जन हमें पूछ रहे थे कि वैसे आप लोग प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते? डॉक्टर लोग तो कहते हैं कि प्याज लहसुन में कई औषधि गुण हैं और हृदय की बीमारी और तरह तरह की बीमारियों से मुक्त होना है तो प्याज और लहसुन खाना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या है? तो मैंने उत्तर दिया कि देखिए, संसार इस तरह से भगवान ने बनाई है कि यहां एक भी वस्तु बेकार की नहीं है, हर एक वस्तु का अपना अपना लाभ है, अपने अपने गुण हैं। तो मैंने कहा देखिए, अफीम और गांजे में भी कई लक्षण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं, कई बीमारियां अफीम और गांजे से भी मुक्त हो जाती हैं। क्या इसका मतलब है कि हम लोगों को कहें कि अब अफीम गांजा पी लीजिए, पान सेवन कीजिए? नहीं। तो जो औषधि गुण प्याज और लहसुन से पाए जा सकते हैं वो अन्य औषधियों से भी पाए जा सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि प्याज और लहसुन ही हमें लेना चाहिए हृदय की बीमारी से दूर होने के लिए। हमें ये देखना है कि संसार में कई अच्छे गुण होते हैं, कई बुरे गुण होते हैं, और हर एक व्यक्ति में, हर एक वस्तु में ये दोनों चीजें रहती हैं। तो हमें चयन करना है कि किस मात्रा में हमें इस वस्तु का प्रयोग करना है, या इस चीज को हमारे जीवन में स्वीकार करना है, या किस हद तक हमें किसी व्यक्ति का संग करना है, क्योंकि हर एक में अच्छे और बुरे गुण रहते हैं। तो जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति में दुर्गुण ज्यादा हैं, तो हम सोचते हैं भाई इनसे दूर रहना अच्छा है। जब अच्छे गुण ज्यादा होते हैं तो उनसे संग करना पसंद करते हैं, भले उनके चरित्र में कोई छोटी बहुत छोटी मोटी त्रुटियां हो भी। उसी तरह से जीवन में जितने भी हम वस्तुएं हम देखते हैं बाहर संसार में, हर एक में कोई अच्छे गुण है, कोई बुरे भी गुण है। अधिक मात्रा में अच्छे किसी वस्तु को लेने से भी उसका परिणाम बुरा होता है। तो उसी तरह से लहसुन और प्याज के अवश्य कोई अच्छे गुण स्वास्थ्य की दृष्टि से हो सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक जीवन प्रगति करने वाले लोगों के लिए प्याज और लहसुन में दुर्गुण भी हैं। हमारी चेतना को विचलित करते हैं, चेतना को राजसिक बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों पदार्थ राजसिक माने जाते हैं, तामसिक भी माने जाते हैं। और कल्पना कीजिए कि मांस जब लोग ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, तो साथ साथ लहसुन प्याज तो होना आवश्यक है। और एक बात हमने उन सज्जन से कहा कि देखिए, आप जानवरों को आपने देखा होगा, जानवर जब यहां वहां चरते हैं या घूमते हैं तो क्या करते हैं, किसी चीज की पहचान कैसे करा करते हैं? वो केवल गंध से अपने नाक को यहां वहां रखते हैं और गंध लेते हैं। गंध के द्वारा ही वो पहचान सकते हैं कि इस व्यक्ति के गुण कैसे हैं, फिर चाहे वो उसे स्वीकार करें या ना करें। तो प्याज और लहसुन के गंध का गंध कैसा होता है हम सब जानते हैं, तो उसके गंध से ही हम पहचान सकते हैं कि इसके गुण या इसके लक्षण कैसे होंगे। इसलिए भले प्याज और लहसुन में कोई अच्छे गुण हो भी, फिर भी क्योंकि उसके अंदर ये दुर्गुण भी हैं, इसलिए हम इन्हें स्वीकार नहीं करते हैं। इस तरह इस संसार में कई चीजें हैं, कई वस्तुएं हैं, परिस्थितियां हैं, स्थान हैं, जिनको बड़े विवेक बुद्धि से हमें स्वीकार करना होगा या अस्वीकार करना होगा। तो वो जो विवेक बुद्धि होती है वो एक हंस के पास होती है या परम हंस के पास होती है। जो दैवी वृत्ति से युक्त का व्यक्ति है, दैवी संपद से युक्त व्यक्ति, वही मात्र ऐसे विवेक कर सकता है कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमें स्वीकार करनी चाहिए, कौन सा है जो नहीं करनी चाहिए। तो सत्ययुग में सभी लोग हंस हुआ करते थे। तो इस संसार है ये दूध और पानी का मिश्रण है, ऐसा समझ लीजिए। दूसरे शब्दों में अच्छे और बुरे चीजों का मिलन है, मिश्रण है यहाँ पर। तो संसार से केवल हमें उन चीजों को स्वीकार करना चाहिए जो हमारे भगवत भक्ति के लिए लाभदायक हो, और उन चीजों को हमें त्यागना चाहिए जो हमारे भक्ति के लिए हानिकारक हो। बहुत सरल सूत्र है ये। तो सत्ययुग में सभी लोग ऐसे जानते थे कि ऐसे कैसे विवेक करना चाहिए, ऐसे कैसे भेद करना चाहिए। जब लोग इस तरह से भेद नहीं कर सकते हैं तो गलत चीजों को फिर वो स्वीकार कर लेते हैं अपने जीवन में। तो सत्ययुग में जो दैवी और आसुरी प्रवृत्ति के लोग रहा करते थे वो अलग अलग लोकों में रहा करते थे, और फिर त्रेता युग के समय दोनों दैवी और आसुरी वृत्ति के लोग एक ही लोक में रहा करते थे परंतु अलग अलग देशों में, जैसे राम और रावण। और जब द्वापर युग आया तो दैवी और आसुरी वृत्ति के लोग एक ही देश में रहा करते थे परंतु अलग अलग शहरों में, जैसे पांडव इंद्रप्रस्थ में रहा करते थे और कौरव हस्तिनापुर में। और कलयुग में क्या होता है, ऐसे बताया जाता है कि कलयुग में दोनों प्रकार के लोग एक ही हृदय में निवास करते हैं। तो हर एक व्यक्ति के हृदय में हमेशा संघर्ष रहता है। हमारे अंदर दोनों हैं, दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्ति, दोनों के बीच में संघर्ष होते रहता है, और इसका अनुभव हम सबको भलीभांति है। कभी कभी हमारे अंदर जो असुर है, जो ऊपर अपना मुख उठाता है, कहता है कि ऐसे करो, ऐसे बोलो, और हमारे अंदर जो देव है वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है, ये बुरा है। और कभी कभी असुर की जीत होती है, कभी देव की जीत होती है। तो इस तरह से हमारे हृदय में संघर्ष चलते रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आसुरी वृत्ति के व्यक्ति में, के हृदय में ऐसे ये गुण इतने प्रभावशाली होते हैं कि दैवी संपदा का वो दमन करते हैं। और उसी तरह से जो दैवी संपद से युक्त व्यक्ति है उसके हृदय में ये दैवी प्रकृति के गुण जो हैं, ये इतने प्रभावशाली और शक्तिशाली होते हैं कि वो आसुर वृत्ति का दमन करते हैं। तो ऐसे ये संघर्ष हृदय में चलते रहता है। अब श्री कृष्ण यहां कह रहे हैं कि जिनको दैवी संपदा का अनुशीलन करना है, कम से कम उन्हें ये जानना चाहिए कि दैवी संपदा है क्या, ये कौन से गुण हैं, ये कौन से लक्षण हैं। और यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तो मेरे पीछे आप दोहराएंगे गीता का ये श्लोक, तीन श्लोक है। वैसे मंदिर में जब हम ऐसे सत्संग करते हैं तो एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर श्लोक लिखा हुआ होता है, परंतु आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हैं। श्री भगवान उवाच, अभयं सत्व संशुद्धि, ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं धर्मस्य यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप्तपार्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवं ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोः नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो श्री कृष्ण कहते हैं हे भरतवंशी भारत अर्थात अर्जुन भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य ऐसे लोग जो जन्म लेते हैं दैवी संपद से युक्त होकर उनके अंदर ऐसे गुण होते हैं। दूसरे शब्दों में ये स्वभाव है लोगों का। जन्म से ही पता चलता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसे है, दैवी प्रवृत्ति वाला आदमी है या ये असुर वृत्ति वाला आदमी है। तो जब दैवी प्रवृत्ति वाला आदमी रहता है उसके अंदर जो लक्षण होते हैं जो गुण होते हैं वो साफ साफ दिखाई पड़ते हैं, बचपन से ही दिखाई पड़ते हैं। भागवत में वर्णन है राजा वेण का, उनके पिता थे महाराज अंग। बेचारे महाराज अंग तो बहुत पुण्यवान धर्म परायण व्यक्ति थे परंतु दुर्दैव से उनका पुत्र बड़ा दुष्ट निकला महाराज वेण, और बचपन से ही उसकी ऐसे गुण दिखाई पड़ने लगे। जब वो छोटा बच्चा था दूसरे बच्चों के साथ जब खेला करता था तो उनको उठा के नदी में फेंक देता था, उनको मार डालता था जान से, और ये सारे शिकायतें राजा के पास आने लगी। अब क्या करे, वो बड़े राजा हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता था। राजा को बड़ा बुरा लगता था क्योंकि वो बहुत सज्जन व्यक्ति थे, परंतु क्या करें, एक लड़का निकला ही ऐसे दुष्ट, बचपन से ही शिशु अवस्था से ही उसकी वृत्ति ऐसी रही। दूसरी ओर हम प्रहलाद का उदाहरण देखते हैं कि प्रहलाद महाराज के पिता बड़े दुष्ट थे, असुर थे, असुर वर्य। प्रहलाद जी जब अपने पिता को संबोधित करते हैं तो असुर वर्य कहते हैं कि असुरों में से श्रेष्ठ है, सबसे बड़े असुर हो आप पिताश्री। तो ऐसे असुर को भी एक ऐसे दैवी संपद से युक्त एक बच्चा प्राप्त हुआ, और प्रहलाद के लक्षण बचपन से ही ऐसे हुआ करते थे। और जबकि साधारण बच्चे बहुत शरारत करते हैं, बहुत ही चंचल होते हैं, नटखट होते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, आवाजें करते रहते हैं, खेल क्रीड़ा आदि में बहुत रुचि रखते हैं, परंतु प्रहलाद ऐसे बच्चे नहीं थे। प्रहलाद बचपन से ही बहुत चुपचाप रहा करते थे, बड़ा सौम्य स्वभाव था उनका, और बच्चों के साथ तो मिलते जुलते थे, तो जिन चीजों में बाकी बच्चे रुचि लेते थे उन चीजों में ये रमन नहीं करते थे वो, बल्कि उनको भगवान की भक्ति के बारे में प्रचार करते थे। जब भी अध्यापक चले जाते थे, थोड़ा अवकाश मिलता था, तो उस समय सारे बच्चों को बुलाते थे और भगवान कृष्ण के बारे में उपदेश देते थे, और सारे बच्चे कहते थे कि अरे प्रहलाद ये सब तुमने कहां से सीखा। तो प्रहलाद ने कहा मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया है। तो बच्चों ने कहा कि भाई तुम्हारे और हमारे गुरु तो एक ही हैं, शंड और अमर शुक्राचार्य के पुत्र, अब इन्होंने तो हमें ऐसे कभी विष्णु भक्ति की बातें सुनाई नहीं। फिर प्रहलाद ने अपने पूर्व जन्म की बात या बल्कि अपने गर्भस्थ अवस्था की बात सुनाई, कहा कि मैं आपको एक बात रहस्यमय बात बताता हूँ मेरे मित्रों, जब मैं मेरे माँ के गर्भ में था तो मेरी माँ नारद मुनि जी के आश्रम में थी, क्योंकि इंद्रदेव ने हमला किया हुआ था हमारे राज्य के ऊपर और इंद्रदेव मेरी माँ को मार डालना चाहते थे, परंतु नारद जी ने कहा कि नहीं, क्योंकि इस महिला के, इस रानी के गर्भ में एक बहुत बड़ा भक्त है, इसलिए आप इसकी हत्या मत कीजिए अभी। तो इंद्रदेव ने बात मान ली, शिरोधारी कह के वहां से निकल गए और उधर नारद जी के आश्रम में रही कयाधु, जो कि हिरण्यकश्यप की पत्नी थी। और नारद जी के आश्रम में तो वातावरण कैसे हुआ होगा हम सब तो कल्पना कर ही सकते हैं, बड़ा भक्तिमय वातावरण था उनका। और प्रहलाद स्वयं कहते हैं अपने मित्रों से कि नारद जी ने श्रीमद् भागवत का संदेश या उपदेश माँ को दिया कयाधु को। अब प्रहलाद कहने लगे मेरी माँ तो भूल गई लेकिन मैं भूला नहीं, मैं मेरे माँ के गर्भ में था, मैंने ये सारे भागवत का उपदेश सुन लिया और मुझे कंठस्थ है, मैंने ध्यान से इसको सुनकर कंठस्थ भी कर लिया, मेरी माँ तो भूल गई। इसलिए नारद जी मेरे गुरु हैं और उनसे मैंने ये सारे कृष्ण भक्ति या विष्णु भक्ति की जानकारी प्राप्त कर ली है। दूसरे शब्दों में, और यहाँ इस बात की पुष्टि श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि जन्म से ही लोगों का स्वभाव निर्धारित होता है, कई चीजें होती हैं जिनका प्रभाव स्वभाव के ऊपर पड़ता है। पहली बात कि हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार, हमने कैसे कार्य किए, हमारे कर्म कैसे रहे हैं पिछले जन्मों में, उस हिसाब से हमें एक तरह का शरीर मिलता है, एक तरह की प्रवृत्ति मिलती है। और दूसरी ओर जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं तो उस समय हमें क्या संस्कार मिले थे, और आगे चल के जिस वातावरण में हम पाले पोसे जाते हैं और जो बाहर के संसार में भी जो प्रभाव का अनुभव हमें करना पड़ता है, इन सब ये सारी चीजें जो है हमारे स्वभाव को बनाती हैं। परंतु मूलतः जन्म से ही व्यक्ति का स्वभाव होता है, तो प्रहलाद का स्वभाव जन्म से ही ऐसे था। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये गर्भाधान संस्कार की विधि वैदिक सभ्यता में हुआ करती थी। और पति पत्नी क्या करते थे, जब संतान की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करने का समय आता तो इस सब विदित बात हुआ करती थी कि आज प्रयत्न करने वाले हैं, और अनेक विधियां आदि धार्मिक क्रियाएं घर में किए जाते थे और भगवान का भजन बड़े तीव्रता से किया जाता था। पति पत्नी दोनों भगवान के नामोच्चारण में दिन भर लगे रहते थे, बल्कि कई दिनों से तैयारी होती थी। वैसे आयुर्वेद शास्त्र में और अन्य कई वैदिक शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में भी इसके बारे में जानकारी है। ये गर्भाधान संस्कार आदि के बारे में बहुत कुछ बतलाया हुआ है। पति पत्नी न केवल अपने शरीर की तैयारी करते हैं ताकि वो स्वस्थ अवस्था में हो, ताकि बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, साथ साथ अपने चित्त की तैयारी भी करते हैं। बड़े तीव्रता से मग्न होकर गीता भागवत के श्लोकों का पाठ करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं, घर में बिल्कुल एक भक्तिमय वातावरण का निर्माण करते हैं, और उस समय कोई तनाव नहीं स्वीकार करते थे। जो होने वाली माँ होती थी, परिवार में सभी लोग देखते थे कि इनके ऊपर कोई भी तनाव नहीं आए, घर की समस्याएं जो है ये इनके ऊपर नहीं आए, ये सुने भी नहीं कि घर में क्या चल रहा है, समस्या क्या हो रही है। इतना महत्व दिया जाता था उन दिनों में, घर में साधु संतों को बुलाया जाता था, कथाएं होती थी ताकि माहौल एक बन जाए, वातावरण बन जाए, बच्चे का चित्त जो है वो बन जाए ठीक। तो बच्चे का चित्त सही करने के लिए माता पिता को पहले से तैयारी करनी पड़ती है, और माता पिता को ही नहीं घर में जितने भी लोग हैं उन सबको तैयारी करनी पड़ती थी। और माता पिता दोनों अर्थात होने वाले माता पिता वो पहले से ही प्रार्थना करते थे भगवान से कि ऐसी आत्मा भेजिए हमारे बच्चे के रूप में जिसकी दैवी संपदा हो, दैवी वृत्ति हो, ऐसे व्यक्ति को आप यहां हमारे पास भेजिए हमारे बच्चे के रूप में। हम असुर वृत्ति के बच्चे को नहीं चाहते हैं। तो ऐसे प्रार्थना करके ऐसे ही भगवान कोई पुण्य आत्मा को भेजते थे, और फिर वो पुण्य आत्मा का स्वभाव पहले से ही पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही अच्छा हुआ करता था। और फिर जब मां के गर्भ में बच्चे का विकास होता शरीर का, तो उस समय भी 9 महीनों तक मां के लिए अनिवार्य था कि वो सदैव ऐसे भजन कीर्तन में मग्न रहे ताकि बच्चे का चित्त और भी दैवी संपद से युक्त हो जाए, ताकि बच्चे का जन्म जब हो तब वो अच्छे स्वभाव से दिव्य स्वभाव से युक्त हो जाए। तो ऐसे ज्ञान आजकल लोगों को नहीं है। और भागवत में हम सुनते हैं कि उस समय भी कभी कभी जब ऐसे कार्य में कोई त्रुटि हो जाती थी तो इसका परिणाम कितना भयंकर होता था। दिति और कश्यप जब इन्होंने संतान के लिए प्रयत्न किया था तो उस समय ठीक नहीं था, नहीं उन्होंने तैयारी की थी अच्छी तरह से, और इसलिए हुआ क्या, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जैसे दो असुरी पुत्र प्राप्त हुए। और जहां तक प्रहलाद का सवाल है तो हिरण्यकश्यप तो बड़ा दुष्ट व्यक्ति था, असुर था, फिर भी क्योंकि संतान की उत्पत्ति के प्रयत्न के समय वो नारायण का नाम ले रहा था, इसलिए देखिए क्या चमत्कार हो गया। ऐसे बताया जाता है कि जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए वन में गए थे तो एक पंछी वहां पे आया, और पंछी उस डाल के ऊपर बैठ के जानबूझकर नारायण का नाम ले रहा, नारायण नारायण। अब नारायण का नाम सुनते ही हिरण्यकश्यप को बड़ा गुस्सा आता, क्योंकि हिरण्यकश्यप तो सोचते थे कि नारायण तो हमारे दुश्मन है, अब ये बार बार नारायण नारायण कह रहा ही कह रही है पक्षी, तो पक्षी को भगा दिया। फिर से पक्षी आ जाती, और जैसे हिरण्यकश्यप तपस्या में अपने आप को स्थित करने का प्रयास करते वैसे वैसे ये पक्षी ऊपर डाले पे आके जिस वृक्ष के नीचे हिरण्यकश्यप बैठे थे या खड़े थे तपस्या करने के लिए, वहां पे वो पक्षी आके नारायण नारायण कहती थी। तो हिरण्यकश्यप ने तो बहुत प्रयास किया उस पक्षी को भगाने के लिए, लेकिन बार बार वो पक्षी आ जाती। अंततः हैरान होकर वो चले गए वापस अपने घर में। कयाधु ने पूछा कि क्या बात है, इतने जल्दी आप आ गए, कितने हजार वर्षों की तपस्या करने के लिए आप वहां गए थे, तो हुआ क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो कर रहा था लेकिन पंछी आके मेरी तपस्या को भंग करते रही बार बार। क्यों, क्या कह रही थी वो पक्षी? कह रहे नारायण नारायण कह रहे थे। अब देखिए कयाधु की चेतना बड़ी अच्छी थी, वो तो भक्त थी वास्तव में, हिरण्यकश्यप जैसे नास्तिक और असुरी वृत्ति की व्यक्ति नहीं थी वो। तो कयाधु को बड़ा अच्छा लगा कि अरे ये नारायण का नाम मेरे पति के मुख से निकल रहा है, वैसे कभी नारायण का नाम लेते नहीं गलती से भी। तो जानबूझकर कयाधु ने पूछा, अच्छा किस क्या कह रही थी पक्षी, क्या कह रही थी? अरे नारायण नारायण कह रही थी। मैंने सुना नहीं, फिर से कहो क्या कह रही थी? ऐसे बार बार अपने पति के मुख से नारायण का नाम निकलवाया। और फिर जब संतान की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न हुआ तो बच्चा कैसे हुआ, प्रहलाद हुआ। और उधर दिति और कश्यप के बारे में देखिए क्या हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा हुए। तो आजकल क्योंकि ये गर्भाधान संस्कार आदि कोई करते नहीं है, लोग जानते नहीं है इसका महत्व, इसलिए जगह जगह ये वर्ण संकर की उत्पत्ति हो रही है, जिसका उल्लेख भगवद गीता के पहले ही अध्याय में श्री कृष्ण करते हैं। तो गर्भाधान संस्कार आदि का ज्ञान न होने के कारण आजकल हम देख रहे हैं कि सारे समाज में सब जगह छोटे छोटे असुर ही उत्पन्न हो रहे हैं। भले बचपन में बड़ी तोतली आवाज में जब बोलते हैं तो बड़े मीठे लगते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो फिर अपने असली रंग दिखाना शुरू करते हैं। तो इसलिए ये तैयारी जो है दैवी गुणों के लिए ये पहले से शुरू होनी चाहिए। ये है तात्पर्य अभिजातस्य ये शब्द का इस श्लोक में। और फिर कृष्ण कहते हैं भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। तो जो ऐसे दैवी गुणों से युक्त ही जन्म लेता है उसके अंदर ये ऐसे गुण होते हैं, ऊपर लिखे जो गुण हैं वही होते हैं। कितने हैं? ये 26 हैं ऐसे गुण। तो श्री कृष्ण ने ऐसे वर्णन किया है, 26 दैवी गुणों का उल्लेख किया है। और शुरुआत करते हैं अभयम से, निर्भयता। निर्भय अगली बात सत्व संशुद्धि ही और ज्ञान योग व्यवस्थित ही। ज्ञान योग, तो आचार्यों ने ऐसी टीका की है कि वास्तव में अभयम सत्व संशुद्धि ही और ज्ञान योग व्यवस्थित ही ये तीन जो हैं ये सन्यासियों के लक्षण होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अन्यों में ऐसे लक्षण नहीं होने चाहिए। ये जितने भी 26 गुणों का उल्लेख श्री कृष्ण यहां कर रहे हैं ये गुण सभी में होने चाहिए। जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, जो अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, परंतु विशेष रूप से ये तीन गुण सन्यासियों में होने चाहिए। अभयम, किस चीज का भय नहीं होना चाहिए। सन्यासी कहीं भी जाए, एक गहरे जंगल में भी चले जाए, रात के अंधकार में बीच में चले जाए, उसे डर नहीं लगना चाहिए कि अरे मैं अकेला हूं यहां पर, अब क्या होगा मेरा, इतने जंगली जानवर हैं, कुछ भी हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि सन्यासी को ऐसे नहीं सोचना चाहिए, उसे जानना चाहिए कि मैं कभी अकेला नहीं हूं, भगवान श्री कृष्ण सदैव मेरे साथ में हैं। जब भगवान जो कि सर्वशक्तिमान है, पूर्णतया समर्थ है, वो हमारे पास सदैव रहते हैं तो हमें डर किस बात का। जैसे छोटा बच्चा जब अपने पिता की छोटी उंगली पकड़कर चलता है, सड़क में जाता है, तो उसे कोई डर नहीं रहता, उसे ये श्रद्धा रहती है कि मेरे पिता मेरी रक्षा करेंगे, मुझे किसी डरने की बात नहीं है। लेकिन बच्चा अकेला जाता है तो डर रहता है कोई बड़े लड़के आके कुछ हमें छेड़खानी करें, कुछ मारपीट करें। तो ठीक उसी तरह से जब ऐसे दैवी वृत्ति से युक्त व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा रहती है भगवान श्री कृष्ण में, तो वो निडर रहता है। वो जानता है कि अब डरने की कोई बात नहीं है। इस तरह से अभयम ये लक्षण दैवी संपद का पहला लक्षण है। वैसे तो ऐसी निर्भयता सब में होनी चाहिए, सबको अनुशीलन करने का प्रयत्न करना चाहिए इन 26 गुणों का। सत्व संशुद्धि ही, सत्व संशुद्धि ही का मतलब है कि उनका आहार, उनका व्यवहार, उनका जो भी कुछ है, रहन सहन, बोल चाल, ये सब दिव्य होना चाहिए। अपने अस्तित्व के शुद्धिकरण के लिए उसको अपनी जीवन शैली ऐसे बना लेनी चाहिए। एक श्लोक है उपनिषदों में, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति ही, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। जब आहार शुद्ध रहता है तो हमारा अस्तित्व शुद्ध हो जाता है। जब अस्तित्व शुद्ध हो जाता है तो हमारी स्मृति शक्ति शुद्ध और तीव्र हो जाती है, तेज हो जाती है। और जब ऐसे स्मृति शक्ति शुद्ध और तीव्र हो जाती है तो हमारे हृदय में आध्यात्मिक जीवन के प्रति झुकाव बढ़ जाता है, आध्यात्मिक वृत्ति और मजबूत हो जाती है। तो ये सत्व शुद्धि ही ये बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ साथ में ये भी कहा गया है, सन्यासी के जीवन शैली ऐसी होती है, महिलाओं से संपर्क नहीं, अच्छे अच्छे वस्तुओं का प्रयोग नहीं, सरल जीवन बिताना चाहिए। वैसे जैसे हमने कहा सभी को करना है, लेकिन विशेष रूप से सन्यासियों के लिए ऐसे कहा गया है। ज्ञान योग व्यवस्थित ही तीसरा गुण है, उसे ज्ञान होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूं और उनकी सेवा करना ही मेरे जीवन का ध्येय है और परिपूर्णता है। इस ज्ञान में पूरी तरह से स्थित होना चाहिए। ये तीन सन्यासी गुण हैं। और फिर आने वाले अगले जो तीन गुण हैं, ये खास करके सब में तो होने चाहिए, परंतु खास करके गृहस्थों में होने चाहिए। कौन से हैं ये तीन गुण? दानम दमश्च यज्ञश्च, दान दम और यज्ञ। दान, दान है वही कर सकते हैं जो कुछ कमा रहे हो। तो वैदिक सभ्यता वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ये चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो इन चार आश्रमों में से केवल एक आश्रम में धन की कमाई होती है, धनार्जन होता है, वो है गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम में तो धनार्जन नहीं होता, विद्यार्थी होता है ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचारी के लिए क्या उचित है इसका वर्णन भी आगे करके आगे चल के कृष्ण बताएंगे। वानप्रस्थ जीवन में भी तपस्या करना आवश्यक है, संन्यास में तो कोई पैसे कमाने का सवाल ही नहीं है। तो ये दान है, ये विशेष रूप से गृहस्थों के लिए है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में जब पैसे कमाए जाते हैं तो लोभ की वृद्धि होना ये स्वाभाविक है। जब हम पैसे कमा रहे होते हैं तो लगता है कि और भी चाहिए, और चाहिए, और बढ़ाना है। और फिर जब पैसे होते हैं तो संभावना रहती है कि हम गलत चीजों में खर्च करें, ये भी संभावना रहती है कि हम अपने आप को कर्ता समझ लें, हम ये सोचें कि देखो मेरी बुद्धि और मेरी मेहनत आदि के कारण मैंने इतने पैसे कमाए हैं, तो अहंकार भी आ जाने की संभावना है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में इन कारणों से और इसलिए भी कि व्यवसाय करते समय कभी कभी कुछ पाप हो जाता है, तो इन पाप कर्मों से मुक्त होने के लिए, अपने लोभ वृत्ति को कम करने के लिए और समाज सेवा की भावना को बढ़ाने के लिए हृदय में गृहस्थ आश्रम में दान ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। दान ऐसे होना चाहिए जैसे महाराज रांतिदेव का था, महाराज शिबी का था, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। इन कथाओं का वर्णन करने के लिए आज हमारे पास समय नहीं है। आपने अवश्य इन राजाओं का नाम तो सुना होगा, ये राज ऋषि थे, अपने जान को भी खतरे में डालकर ये अन्यों की भलाई करने के लिए, दान देने के लिए तैयार थे। जब हमारे पास बहुत कुछ होता है और हम थोड़ा कुछ दान देते हैं तो इससे हमारे हृदय में कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि जितना दान देते हैं उससे बहुत कुछ हमारे पास रह जाता है, इसलिए कोई कठिनाई नहीं होती। परंतु जब हमारे पास अधिक मात्रा में धन आदि नहीं होता है और फिर भी हम दान देते हैं तो वो वास्तव में दान है, और यदि है भी और हम अधिक देते हैं, इतना देते हैं कि जब तक हमें चुभे, वो सच्चा दान है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण तीन प्रकार के दान का वर्णन करते हैं, सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान। तामसिक दान वो है जो बिना देश काल पात्र के विचार से दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को देना है, वो भले कुछ भी क्यों न करे उस धन के साथ, बिना विचार किए हुए आंख बंद किए जिसको देना है दे दिया। कभी गलत आदमियों को भी दे देते हैं, उस धन का दुरुपयोग तो होता ही है फिर बाद में चल के। राजसिक दान वो है जो प्रतिष्ठा के लिए किया जाता है, नाम सम्मान सम्मान आदि के लिए दिया जाता है, ताकि हम समाज में प्रतिष्ठित हो कि कितने दानी व्यक्ति हैं। साथ साथ में जो बड़े संकोच से दिया जाता है कि अरे ये आए हैं हमारे पास, चलो इनको देना चाहिए, काश नहीं आते तो अच्छा होता, तो ऐसे संकोच से जो दान दिया जाता है वो राजसिक दान है। और फिर सात्विक दान, सात्विक दान वो होता है जो देश काल पात्र को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है, अच्छे कार्य के लिए, अच्छे व्यक्ति को अच्छे समय में और अच्छे कारण के लिए दिया जाता है। तो यह है सात्विक दान। और इससे भी श्रेष्ठ है आध्यात्मिक दान, जो भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की सेवा के लिए किया जाता है। तो जब ऐसे दान सात्विक या आध्यात्मिक होता है, कम से कम सात्विक, तब गृहस्थ को लाभ बहुत मिलता है। केवल सात्विक दान हो तो वो पुण्य कहलाता है, जब आध्यात्मिक दान हो तो वो भक्ति कहलाता है। जब सात्विक दान देते हैं तो पुण्य के कारण हमें आने वाले जन्मों में बहुत सुख सुविधा प्राप्त होगी, हो सकता है स्वर्ग लोक भी चले जाएं अगले जन्म में। परंतु आध्यात्मिक दान अर्थात भगवान जी से जो संबंधित है, ऐसे चीजों में हम दान देंगे तो फिर हम भक्ति के पथ में प्रगति करेंगे और भगवान का नाम कीर्तन आदि करते करते अंततः जब जीवन की समाप्ति होगी तब हम भगवान के धाम में चले जाएंगे, स्वर्ग लोक नहीं। स्वर्ग लोक भी तो इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा है। जो स्वर्ग लोक में जाते हैं उन्हें भी लौट के आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, ऐसे भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं। जब पुण्य हमारे क्षीण हो जाते हैं तब स्वर्ग लोक से पतन होकर व्यक्ति पृथ्वी लोक पर आ जाता है पुनः। तो भगवत दान या भगवान से संबंधित दान ये भी बहुत आवश्यक है। आगे दमह, दमह का मतलब है कि हमारे मन और इंद्रियों को संयमित करना। ऐसे नहीं है कि केवल सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को अपने इंद्रियों पे और मन पे वश करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं, सभी को करना चाहिए। और विशेष रूप से काम वासना जो होती है गृहस्थ जीवन में, इसके ऊपर भी दमन करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में जो बातें बताई गई है आजकल के जमाने में कहना भी मुश्किल है, क्योंकि लोग तो मानते नहीं है। परंतु सत्य बात तो ये है कि मनुष्य जीवन हमें भगवत प्राप्ति के लिए ही मिली है, केवल भोग के लिए नहीं। तो ऐसे बताया जाता है कि विवाहित जीवन में भी थोड़ी बहुत छूट भोग के लिए दी जाती है, परंतु ये असीमित छूट नहीं है। इसके लिए भी कई विधियां होती हैं, कई सीमाएं होती हैं। यहां तक कि पति पत्नी को एकत्र आना चाहिए केवल संतान की उत्पत्ति के लिए, अन्यथा नहीं। परंतु ऐसे नियमों का पालन आजकल समाज में कौन कर सकता है, कौन करता है आजकल? परंतु जो शास्त्रों में बताई हुई बातें हैं इनको जानना तो आवश्यक है। तो गृहस्थ आश्रम में भी व्यक्ति को चाहिए कि वो एक संयमित जीवन जिए, अपने मन और इंद्रियों को वश में करने के लिए ऐसे विधि विधानों का, विधि निषेधों का पालन करें जिससे चित्त का शुद्धिकरण हो और मन नियंत्रण में आ जाए। और फिर यज्ञ, पहले के जमाने में यज्ञ अग्निहोत्र आदि हुआ करते थे, परंतु कलयुग में अग्निहोत्र आदि करना ये बहुत मुश्किल है। आजकल इतना घी ही कहां मिलता है, और बड़ी मात्रा में जो ब्राह्मण आदि की ब्राह्मणों की आवश्यकता है वो कहां मिलते हैं आजकल? विरला ही कोई एक अच्छा ब्राह्मण मिल जाता है। और इतनी बड़ी संख्या में आदर्श ब्राह्मण, वो जो भी बिल्कुल निपुण है, प्रवीण है मंत्रों में तंत्रों में, ऐसे लोगों को पाना कलयुग में बड़ा मुश्किल है। जिनका हृदय पूरी तरह से स्वच्छ है, जिनका कोई स्वार्थ नहीं है, तो इन कारणों से अग्निहोत्र आदि करना इस कलयुग में बहुत मुश्किल है। तो कलयुग के लिए जो यज्ञ है वो है नाम संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ, यज्ञों वही विष्णु। यज्ञ इसलिए किया जाता है कि हम भगवान कृष्ण या विष्णु को प्राप्त करें। तो कलयुग में जो लाभ सत्ययुग में ध्यान से पाया जाता था, त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ संपन्न करके और द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करने से, वो कलयुग में केवल भगवान के नामों का उच्चारण से होता है। कलोत्तन हरि कीर्तनात्, तो हरि कीर्तन या कृष्ण कीर्तन यही एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत के अनुसार। तो हरे गृहस्थ के घर में प्रतिदिन ये संकीर्तन यज्ञ होना चाहिए। मंदिरों में तो होता ही है, परंतु हर घर में सुबह शाम संकीर्तन होना चाहिए। हर घर में छोटा सा मंदिर होना चाहिए। यदि गरीब से गरीब भी हो व्यक्ति, यथाशक्ति वो अपने घर में मंदिर बनाए, छोटा सा क्यों ना बनाए, लेकिन बनाए। और सारे परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वो आए, इकट्ठा आके नाम संकीर्तन करें और भगवत गीता श्रीमद् भागवत आदि का पाठ करें, कम से कम 15 मिनट आधा घंटा सुबह और आधा एक घंटा कभी शाम को। परंतु विडंबना आजकल तो ये है कि जहां पहले घरों के मंदिर हुआ करते थे, आजकल नए मंदिर बने हैं जो टेलीविजन है। तो मंदिरों में आके बैठने के बजाय सभी लोग टेलीविजन के सामने बैठते हैं, तो सारा दिन या शाम को आते हैं तो टीवी के सामने बिता लेते हैं, तो फिर कीर्तन करने का समय कहाँ है और न ही इच्छा किसको कैसे होगी किसी को। तो ये संकीर्तन यज्ञ हर एक घर में करना बहुत बहुत आवश्यक है। और फिर वो कहते हैं स्वाध्याय तप आजवम, ये ब्रह्मचारियों के लिए है स्वाध्याय, क्योंकि ब्रह्मचारी जीवन है, छात्र का जीवन, विद्यार्थी का जीवन है। तो ब्रह्मचारियों को चाहिए कि वो शास्त्रों का अध्ययन करें, बड़े ध्यान से करें और प्रतिदिन करें, ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि उम्र होती है ना, एक आयु होती है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। बचपन में जितना हम पढ़ लेते हैं वो जीवन भर रह जाता है, जैसे जैसे आयु बढ़ती रहती है याददाश्त कम होती जाती है और ज्ञान को प्राप्त करना, हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ब्रह्मचारियों को स्वाध्याय करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, परंतु विशेष रूप से ब्रह्मचारियों के लिए ये आदेश है। वैसे तो ये जैसे हमने कहा हर एक जो गुण है इसके बारे में विस्तार में चर्चा किया जा सकता है। फिर तप, तपस्या, एक ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने आप के लिए कभी भी वो किसी भी प्रकार की सुविधा न चाहे, जैसे गुरु कहते हैं वैसे ही करे। बल्कि पुराने जमाने में ऐसे हुआ करता था, आजकल तो नहीं, जब गुरुकुल में बच्चे रहा करते थे गुरु के साथ और गुरु माता और गुरु के साथ में, तो जब तक गुरु भोजन नहीं पा लेते थे और बच्चे को बुलाते नहीं थे भोजन के लिए, तब तक बच्चा भोजन नहीं लेता था। और यदि गुरु ने कहीं भूल गरीब गुरु कभी भूल गए तो लड़का भी भूल जाता, वो नहीं लेता था भोजन। यह है तपस्या। और कष्ट लेना ये बहुत आवश्यक है। बचपन से यदि बच्चों को कष्ट लेना सिखाया नहीं जाए तो आगे चल के वो खराब हो जाते हैं। बचपन में उनको कठिनाई थोड़ी बहुत मिलनी चाहिए। कठिनाई किस तरह की कठिनाई? एक संयमित जीवन, केवल ऐसी चीज जो उनको अच्छे लगते हैं, मनमाने ढंग से जो वो पूछते हैं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कभी कभी मना करना पड़ता है कि नहीं, ये तुम्हें नहीं मिलेगा, ये अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए हानिकारक है। और कभी कभी अच्छी चीजों के लिए कभी थोड़ा बहुत जोर भी देना पड़ता है, अधिक तो नहीं, थोड़ा तो कम से कम देना चाहिए। इस तरह से बच्चों का चरित्र बनता है तपस्या से। तपस्या नहीं होगी बचपन से तो फिर चरित्र बिगड़ जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि भागवत में और अन्य ग्रंथों में भी राजा जो होते थे अपने तरुण पुत्रों को जंगल भेजते थे, वन में भेजते थे तपस्या करने के लिए, ताकि वो तैयार हो जाए आके राज के बोझ को संभालने के लिए। क्योंकि जो राजा बनेगा उसकी उसकी वृत्ति ठीक होनी चाहिए, दिमाग ठीक होना चाहिए, नहीं तो वो भी दुष्ट निकलेगा। तो ऐसे तपस्या करके फिर वो आके अपने राजमहल में रह के राज करते। परंतु तपस्या करने के कारण वो जानते थे कि मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है, और अपने भोग और ऐश्वर्य से ज्यादा प्रभावित न होकर निरासक्त भाव से अपना जीवन बिताते थे। प्रजा के संतुष्टि के लिए, प्रजा की सेवा के लिए ही वो रहा करते थे। तो तपस्या ये सब के लिए है, खास करके ब्रह्मचारियों के लिए है। और यदि वो राजपुत्र भी क्यों ना हो, राजकुमार भी क्यों ना हो, उनके लिए भी ऐसे अनिवार्य था। और फिर आगे चल के श्री कृष्ण यहां कहते हैं आर्जवम, सरलता, सभी को सरल होना चाहिए, और विशेष रूप से विद्यार्थी जीवन में। जब ब्रह्मचारी लोग पहले गुरुकुल में रहा करते थे, कोई साधन नहीं हुआ करते थे, आश्रम में कौन से साधन होते थे, प्राय ये सारे आश्रम वन में हुआ करते थे। तो रोज जंगल में जाना पड़ता, लकड़ियां आदि काट के लानी पड़ती, बहुत परिश्रम करना पड़ता। फिर दिन भर या तो अध्ययन कर रहे हैं, या कथा सुन रहे हैं, या कोई सेवा कर रहे हैं, ऐसे बीतता था। और जीवन बिल्कुल सरल, ऐसे नहीं कि ठाट का जीवन जीना है, बहुत ऐश्वर्य का जीवन जीना है, नहीं। घर में माता पिता के पास कितना भी धन क्यों ना हो, लेकिन बच्चे को अधिक धन बचपन में नहीं देना चाहिए। बच्चों को शुरुआत से ही सरल जीवन के लिए आदत सिखानी दिलानी चाहिए, ताकि आगे चल के वो धन से प्रभावित ना हो, और धन होते हुए भी या न होते हुए भी उनका चित्त समान रहेगा, बिगड़ेगा नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। आजकल के जमाने में इनका महत्व और भी बढ़ते जा रहा है। और आगे कृष्ण कहते हैं अहिंसा सत्यम अक्रोधः। अहिंसा का मतलब है कि प्राणियों की हत्या नहीं करना, शाकाहारी भोजन ग्रहण करना। किसी भी सभ्य समाज में मासूम पशुओं की हत्या करके उनको इतना कष्ट पहुंचा के हमारा पेट हम भरे, ये ठीक नहीं है। किसी भी सभ्यता के सूत्रों के अनुसार ये मिलता जुलता नहीं है। क्यों हम इतना क्रूर बने केवल हमारे जीव के लालसा के लिए, ये उचित नहीं है, बड़ा पाप है। तो अहिंसा की शुरुआत होती है पशु हत्या बंद करने से, मांसाहार आदि जो है ये बंद करने से। ऐसे तो बताया गया है कि जो व्यक्ति मांस खाने में हिचकिचाता नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं देखता है, तो आगे चल के उसकी वृत्ति ऐसी बन जाएगी कि इंसानों को भी मारने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। उसे ये नहीं लगेगा कि ये कितना बुरा है, क्योंकि चेतना वैसी बन जाती है। सत्यम, सत्य अर्थात न केवल कि हम जीवन में झूठ ना बोलें हमारे दैनिक जीवन में, साधारण जीवन में, परंतु परम सत्य भगवान श्री कृष्ण के आदेशों के अनुसार जिए। ये जानना कि श्री कृष्ण ही परम सत्य है, और उनसे संबंधित जो भी कुछ है यही मात्र सत्य है, और ऐसा ही जीवन हमें बिताने का प्रयत्न करना चाहिए। अन्यथा वो क्या होगा, जैसे वो चोर डाकू जो होते हैं बैंक को लूट लेते हैं, और आके भी बड़ी ईमानदारी से अपने आप में बांट लेते हैं धन। तो ऐसे ईमानदारी की क्या कीमत है, क्या मूल्य है, क्या मतलब है? क्योंकि वो ईमानदारी जो है वो चोरी पर आधारित है, वो असत्य पर आधारित है। तो इसी तरह से दैनिक जीवन में सत्य का पालन करना महत्वपूर्ण तो है ही, परंतु इससे भी महत्वपूर्ण है कि परम सत्य का आश्रय स्वीकार करना, भगवत भक्ति के पथ में चलना, यह है सत्यम। अक्रोध है, क्रोध नहीं करना बिना वजह। क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न होता है और जब काम पूर्ण नहीं होता तो क्रोध अधिक मन में बढ़ जाता है। हमारी इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होती हैं तो गुस्सा आता है कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के कारण मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, इसलिए उस व्यक्ति के ऊपर हम क्रोधित हो जाते हैं। परंतु गुस्सा ये आदमी की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। आगे चल के ही श्री कृष्ण बताने वाले हैं इसी अध्याय में कि तीन द्वार होते हैं नरक के लिए, काम क्रोध लोभ। ये तीन द्वार जो नरक में ले जाते हैं, आजकल ये द्वार तो बहुत खुले हुए सारे समाज के लिए, सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं, बल्कि इनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि आजकल तो सारे समाज की जो गतिविधियां हैं वो क्या है, जो मान लीजिए कोई शाही मार्ग जो है लोगों को नरक जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, राजकीय मार्ग, बड़े बड़े जो राजमार्ग होते हैं नरक के लिए तैयार हो रहे हैं प्रगति के नाम पे, आधुनिकता के नाम पर। तो ये काम क्रोध और लोभ ये तीन चीजें हैं जो हमारे बड़े शत्रु हैं। ये तीनों ही आदमी के बुद्धि को भ्रष्ट करती हैं। इसलिए क्रोध को भी त्यागना चाहिए। फिर कहते हैं त्याग शांतिर अपैशुनम। तो त्याग अर्थात उन चीजों को त्यागना जो हमारे भगवत भक्ति के प्रतिकूल है, जो हानिकारक है। कई चीजें हैं, चाहे वो दुनिया उन्हें ठीक माने या न माने, लेकिन हमें शास्त्रों के आधार पर अपने जीवन को बिताना चाहिए। दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए कि दुनिया क्या कहेगी। भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास हमें करना चाहिए और जो आवश्यक है उनको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति के पथ में हो मैं आगे बढ़ाएंगे, और जो भगवत भक्ति के लिए हानिकारक है उन चीजों को त्यागना चाहिए। ये है त्याग। और आगे चल के कृष्ण कहते हैं शांति ही। शांति ही मतलब अलग अलग परिस्थितियों में हमें शांत रहना चाहिए, समान दृष्टि से अनेक परिस्थितियों को देखना चाहिए। संसार में रहते हुए कभी सुख होता है तो कभी दुख, कभी मान तो कभी अपमान, ये तो संसार का नियम है, ऐसे तो होगा। कभी यश तो कभी अपयश, कभी सफलता तो कभी असफलता। तो इन द्वंद्वों के बीच में रहते हुए हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए, समान भाव से इन द्वंद्वों का सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मात्रा स्पर्शास्त्र कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा पायिनो नित्याः ताम स्थितिक्षस्व भारत। वो कहते हैं जिस तरह से गर्मी का मौसम आता है जाता है, जाड़े का मौसम आता है जाता है, दोनों अपने आप आते हैं जाते हैं और उनको सहन करना चाहिए, ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में भी सुख आते हैं जाते हैं, दुख भी आते हैं जाते हैं, इनको सहन करना चाहिए। ये सहन करने की जो वृत्ति है उसे हम शांति कहते हैं, समान दृष्टि से दुख और सुख और अन्य द्वंद्वों को देखना। और फिर अपैशुनम। अपैशुनम का मतलब है कि दूसरों के अंदर दोष देखने की वृत्ति से मुक्त होना। ये एक हमारे अंदर वृत्ति होती है, एक झुकाव होता है कि तुरंत दूसरों के अंदर दोष दिखाई पड़ते हैं, ये व्यक्ति ऐसे है, वो व्यक्ति वैसे है। भागवत में तो कहा ही गया है कलो दोष निधे राजन। ये दोषों की निधि है, निधि अर्थात समुद्र। तो समुद्र में जब हम रहते हैं पानी के समुद्र में, तो चारों तरफ जहां भी हमारी नजर जाती है वहां तो हम पानी ही देखेंगे ना, उसमें आश्चर्य की बात क्या होगी। तो उसी तरह से ये कलयुग दोषों का सागर है, जहां भी हम नजर घुमाते हैं वहां दोष ही दिखाई पड़ते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम दोषों को न देखें। हाँ, जो सत्य है वो बताना आवश्यक है, नहीं तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे कैसे, समाज में सुख और शांति लाएंगे कैसे। तो अपैशनम का मतलब ये नहीं है कि कोई गलत काम हो रहा हो और हम चुपचाप बैठे, नहीं। जब कोई गलत काम हो रहा हो तो उसे रोकने का कर्तव्य भी हमारा होता है, परंतु बिना वजह दूसरों में दोष देखना और दूसरों के दोष में रमण करना और दूसरों के दोषों का प्रचार प्रसार करना, ये उचित नहीं है हमारे लिए। और ऐसे दोषों के सागर में रहते हुए भी श्री कृष्ण कहते हैं या भागवत में सूत गोस्वामी जी कहते हैं, अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संघ परम व्रजेत, कि कलियों के दोषों के सागर में एक अच्छा गुण है और वो है कृष्ण कीर्तन, जिसके द्वारा हम संसार के द्वंद्वों से मुक्त हो सकते हैं और भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। दया भूतेषु अलोलुप्त्वम्, दया भूतेषु, सारे प्राणियों के प्रति हमें दया की भावना होनी चाहिए, करुणा की भावना। ये सभ्य समाज है और जैसे हमने कहा कि दया की भावना, जैसे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि मांस नहीं लेना चाहिए, पशुओं की हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दया के सिद्धांत के विरुद्ध है। एक बार एक दूसरे धर्म के व्यक्ति हमें कहीं मिले थे, हम जब यात्रा में थे, तो वो कह रहे थे कि आप लोग शाकाहारी क्यों हैं, इसमें क्या खराबी है। तो हमने यही कहा, क्योंकि ये दया के विरुद्ध है। बस वैसे तो बहुत तर्क किया जा सकता है, कितना बड़ा विषय है ये, परंतु साधारण बात यही है कि दया दिखानी चाहिए। हमसे जो कमजोर प्राणी हैं उनकी रक्षा करने के बजाय, उनके ऊपर दया करने के बजाय अब उनकी हत्या करके उनको खा जाएं, ये कैसी वृत्ति है, ये कैसी सभ्यता है। फिर अलोलुप्त्वम् अर्थात लोभ से मुक्त होना, क्रोध के बारे में तो हम बात ही कर ही चुके हैं, और लोभ से भी मुक्त होना चाहिए। ये सब आग हैं जो व्यक्ति के मन के शांति को खा जाती हैं, इसलिए तो नरक के द्वार माने जाते हैं। त्रिवेद नरक सेदम, ये नरक में जाने वाले रास्ते हैं। तो लोभ को भी हमें दबा के रखना चाहिए, इसका दमन करना चाहिए। कैसे? संतुष्ट होकर, जो भगवान दिलाते हैं ठीक है, वही मेरे लिए ठीक है, अपनी ईमानदारी का परिश्रम करना है और उसके पश्चात जो हमारे पास आएगा उससे संतुष्ट होना है। जब हम कहते हैं कि हमें संतुष्ट रहना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे चीज के लिए हमें प्रयत्न नहीं करना चाहिए या हमारे कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं है। कर्तव्यों का पालन तो करते रहना चाहिए, परंतु हमारे कर्मों के फलों से निरासक्त होना चाहिए और फिर संतुष्ट रहना चाहिए भगवान के ऊपर निर्भर रह के। ये है अलोलुप्त्वम्। और उसके बाद कृष्ण कहते हैं मार्दवम्, बहुत सौम्य होना चाहिए हमें, कठोर नहीं होना चाहिए। हालांकि कभी कभी दुष्ट लोगों के दमन के लिए, समाज के भलाई के लिए, क्षत्रियों को जो राज कारोबार को संभालते हैं उनको कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं अन्यों के रक्षा के लिए, परंतु इसलिए नहीं कि वो क्रूर है, इसलिए कि प्रजा की रक्षा करना चाहते हैं दुष्ट लोगों से। परंतु आम तौर से हम देखते हैं, जैसे शास्त्रों में वर्णन है कि राजा जो होते थे वो भी ऋषि थे, राज ऋषि थे। जब दुष्टों का सामना करना पड़ता था तो बहुत तेज गति से वो अपना युद्ध आदि सब करते थे, वज्र के समान कठोर हुआ करते थे, परंतु जब ऐसे दुष्टों के साथ व्यवहार नहीं करते और प्रजा के साथ में, साधुओं के साथ में बिल्कुल सौम्य व्यवहार रहता था उनका, केवल आवश्यकता पड़ने पर कठोर, वज्रादपि कठोराणि कुसुमादपि कोमलम, कि वज्र से भी अधिक कठोर जब बनने की आवश्यकता होती है और एक फूल से भी ज्यादा कोमल। ऐसे कई चीजें हैं जो बहुत सुंदर है, जिनकी चर्चा बहुत समय के लिए की जा सकती है। फिर श्री कृष्ण बताते हैं अचापलम, कि हमें सुदृढ़ होना चाहिए अच्छे काम करने के लिए, बुरे काम के लिए नहीं, और आधा छोड़ना नहीं चाहिए निराश होकर कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और क्या करें, अब कोई सहायता हमारी नहीं कर रहा है, चलो हम छोड़ देते हैं, आधे काम को छोड़ देते हैं, नहीं। बहुत हमारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए कि अच्छे काम को छोड़ना नहीं चाहिए। साथ साथ में ह्री ही एक तरह की लज्जा होनी चाहिए कि हम बिल्कुल सबके सामने आना नहीं चाहते हैं। ठीक है, प्रसिद्धि आई, प्रतिष्ठा आई तो आई, दैव से यदि कपाल में लिखा है तो आ जाएगा, परंतु ऐसा नहीं कि जानबूझकर हमारे प्रसिद्धि के लिए, प्रतिष्ठा के लिए हम बहुत कुछ करें। हम आसानी से रहें, भगवान की सेवा करते, हमारे समाज में कर्तव्यों को निभाते। तेज है, कि तेज है मतलब बड़े शक्ति से हमारे काम करना, हमारे कर्तव्यों का पालन करना अच्छाई के लिए। आलसपन जो है ये सत्वगुण का लक्षण नहीं है, ये तमगुण का लक्षण है। तो बुरे कामों को रोकना भी ये सत्वगुण का लक्षण है, और रजगुण जो क्षत्रिय होते हैं उसका पालन करते हैं। तो बुरे गुण जब बुरे चीजें जब चल रही होती हैं, हम देखते हैं तो आवाज उठाना चाहिए। इसलिए तेज 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 चाहिए इसके लिए। आगे बताते हैं क्षमा, क्षमा नहीं होता तो दुनिया तो टूट जाती। यदि हमारे हृदय में क्षमा भावना नहीं होगी तो हमारे कोई भी संबंध टिकेंगे नहीं। और आजकल लोगों में धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है, क्षमा नहीं करना चाहते हैं, नहीं जानते भी हैं क्षमा करना क्या चीज होती है। भूल तो सबसे हो जाती है, परंतु किसी व्यक्ति ने हमारे प्रति कुछ गलत काम किया है, नहीं भी किया होगा, हो सकता है कि हम केवल गलत सोच रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति ने किया है, हो सकता है ऐसे नहीं किया, हमारी गलत फहमी हो गई है, लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किया भी होगा हमारे प्रति, फिर भी क्षमा कर देना चाहिए। इसको बड़ी बात नहीं बनानी चाहिए, और खास करके बदला लेने की जो प्रवृत्ति है उससे तो दूर ही रहना चाहिए। बदला लेने की जो प्रवृत्ति है वो तो हमारे मन को नरक बना देगा। जिसके प्रति हम बदला लेने जा रहे हैं, हम कुछ षड्यंत्र बनाने जा रहे हैं, वो तो बेचारा अच्छा अपना सुखी रहेगा और हम तड़पते रह जाएंगे। ये सारे सात्विक गुण हैं, दिव्य गुण हैं। धृति ही की चर्चा तो हमने कर ली। शौचम, अंदर से बाहर से। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये शौचम अंदर से और बाहर से ये खास करके वैश्य प्रवृत्ति के लोगों के लिए है, जो व्यवसाय आदि में रहते हैं। न केवल शरीर से स्वच्छ होना चाहिए, न केवल मन स्वच्छ होना चाहिए, परंतु व्यवहार भी हमारे स्वच्छ होने चाहिए, क्योंकि व्यवहार में बहुत से ऐसे अवसर आते हैं जब हम अन्यों के प्रति अत्याचार या अन्याय करके पैसे कमा लें, क्योंकि बहुत गलत काम कर लें, चोरी आदि के द्वारा बहुत कुछ किया जा सकता है व्यवसाय में। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं शौचम, स्वच्छता होनी चाहिए हमारे बर्ताव में, हमारे व्यवहार में, व्यवसाय में इत्यादि। अद्रोह है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जलना नहीं चाहिए। आपको पता है कि यहाँ ट्रकों में पीछे बहुत कुछ सारे सूत्र लिखे जाते हैं ना, जैसे बुरी नजर वाले तुम्हारे मुंह काला, ऐसे सब लिखा हुआ होता है ना। तो एक जगह हमने बहुत सुंदर चीज पढ़ी थी एक ट्रक के पीछे, कि जलना हो तो दीपक की तरह जलो। और हमने सोचा था कि कितनी सुंदर बात कही है, जलना है तो दीपक की तरह जलो। जलना अर्थात हृदय में किसी के प्रति जलना कि इसके पास इतना क्यों है, मेरे पास कम है, उसको ये क्यों मिला, मुझे नहीं मिला। ऐसे जलने से क्या होगा, केवल हमारा हृदय ही जल जाएगा, केवल ये अशांति का कारण होगा, कभी सुख हमें नहीं मिलेगा। जिस व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में जलन है वो बेचारा अपने जगह में रहेगा, सुखी हो सकता है, परंतु हमारे हृदय में अशांति हो जाती है। तो जलना है तो दीपक की तरह जलने का मतलब है कि दीपक ज्ञान रोशनी देता है ना, सब जगह अंधकार में रोशनी प्रदान करता है, तो उसी तरह से हमें भी समाज में रहते हुए रोशनी, ज्ञान की रोशनी, प्रेम की रोशनी, अन्य दिव्य गुणों की रोशनी फैलानी चाहिए समाज में, ऐसे हमें होना चाहिए। न अति मानिता, प्रसिद्धि प्रतिष्ठा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, कि ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए जिससे कि लोग हमें जबरदस्ती सम्मानित करें। नहीं, यदि हमारे गुण ऐसे हों कि अपने आप लोग हमें सम्मान कर रहे हैं तो वो सच्चा सम्मान है। तो ऐसे दिव्य गुणों से युक्त व्यक्ति कभी अन्यों के सामने जाके सम्मान मांगता नहीं है, उसके गुण ही ऐसे होते हैं कि स्वाभाविक रूप से अन्य लोग उसको मानते हैं, सम्मान देते हैं। न अति मानता मानिता, तो ये सारे हैं, ये 26 हो गए, केवल संक्षेप में हमने उल्लेख किया, इनका वर्णन किया, क्योंकि समय काफी बीत गया है, पता नहीं चला कैसे समय बीत गया। तो संक्षेप में इन 26 दिव्य गुणों का हमने वर्णन करने का प्रयास किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी शांति से यहाँ बैठे रहे, और प्रार्थना करता हूँ समस्त मोहता परिवार आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की, श्रीमती राधा रानी की कृपा हो, आप सब भक्ति मार्ग में अच्छी तरह से आगे बढ़ते रहें, और आपके जीवन में सदैव भक्तिमय एक वातावरण बना रहे, और साथ साथ में आप जब जो भी यहाँ उपस्थित हैं, बल्कि हम सब के लिए ऐसा ही हो, हम सब भी भगवान के भक्ति के पथ में आगे चलते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
स्वामी जी के बड़े आभारी हैं कि अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ हम सबको ये दैवी संपदा के विषय में 26 गुणों का वर्णन किया है। सब सभी को अपने ये सब गुण रहने से सब अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। धन्यवाद। अब आप सबको ही प्रसाद लेके जाएंगे, बाहर सब प्रसाद सबको ही देंगे, हम यहाँ भी देंगे।
अरे oh yeah.